नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिम यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथूला मार्ग से यात्रा करेगा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। यह आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22वें ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।